Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ye asal mein shabd satya hai jo hum bolte hain aapas mein, ki ye satya hai ya satya ke मुकाबले में झूठ होता है, ये सच है या झूठ। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग ब्रह्म विद्या में है सत, स और फिर त लिख के उसको हलंत कर देते हैं आधा, सत के मुकाबले में असत नहीं होता कभी भी, वो अद्वय है, उसके मुकाबले में कोई दूसरा है ही नहीं, कोई और शब्द ही नहीं है। अर्थात सत कभी असत में नहीं बदलता। गीता में ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। अगर इस गीता के दूसरे अध्याय के इस श्लोक की कभी गंभीरता पूर्वक आपने स्वयं चिंतन किया हो या सुना हो तो उसमें सत शब्द का ठीक से व्याख्या और उसका कभी अभाव नहीं होता, असत कभी होता ही नहीं, ऐसा उसमें बतलाया। ये जो बुद्धि के माध्यम से वैज्ञानिक तथ्यों को जो हम सत कहते हैं वो असत में बदल जाते हैं, वो सत्य नहीं होते, बदल सकते हैं। लेकिन जिस सत की हम बात कर रहे हैं वो कभी फिर असत में नहीं बदलता, वो एक रस ही रहता है। ज्ञान का संबंध ज्ञाता और ज्ञेय से होता है, जैसे सत का संबंध कर्म और कर्ता से है, चित्त का संबंध ज्ञाता और ज्ञेय से है, और आनंद का संबंध भोक्ता और भोग्य से है। ऐसे इन शब्दों की हम जितनी जितनी आगे व्याख्या करेंगे तो ये समझ में आ जाते हैं कि ये सत है, ये चित्त और आनंद, इनका क्या अभिप्राय। और फिर चित्त में ज्ञाता और ज्ञेय नहीं होते, आनंद में भोक्ता और भोग्य नहीं होते, ये दो नहीं होते, ये वेदांत की आखिरी प्रक्रियाएं हैं। इस पर एक दिन थोड़ी चर्चा की भी थी दृष्टा और दृश्य के संबंध में कि दृष्टा और दृश्य दोनों एक कैसे होंगे, तो दोनों जब नहीं रहेगा, दृष्टा नहीं होगा तो दृश्य भी नहीं होगा, और दृश्य नहीं होगा तो दृष्टा भी नहीं होगा, दोनों अपने अधिष्ठान में अध्यस्त हैं, ये इसका अभिप्राय था। मुख्य बात केवल इतनी सी ध्यान में रखें, बहुत अधिक इसमें आप ना भी जाएं सूक्ष्मता में, तो बात यह है कि सत चित आनंद में पहला शब्द सत है। अगर सत आधार नहीं है चित्त का या आनंद का तो फिर वो आनंद नहीं, वो चित्त नहीं, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान भी वही ज्ञान टिका रहेगा जो सत पर आधारित, असत पर आधारित ज्ञान बदलते रहे। आज ये खोज हुई, कल दूसरी खोज हुई, परसों नई अन्वेषण हुआ, किसी एक अंतम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे कि ये फाइनल है। अंतम निष्कर्ष पर तभी पहुंचेंगे अगर वो ज्ञान सत पर आधारित है, तो त्रिकाल अबाधित उस तत्व पर आधारित है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो नित्य है। नित्य का मतलब होता है जो, नित्य का मतलब हुआ जो अब है, इस समय भी है। बहुत सीधा सा, नित्य में कोई जब जितना जितना नित्य के आप नजदीक पहुंचेंगे उतना उतना ही आप ब्रह्म के नजदीक पहुंच जाएंगे। नित्य वो नहीं होता कि जिसकी इंतजार करनी पड़े कि कुछ करने के बाद हमें मिलेगा, कि हम ऐसे कुछ करेंगे फिर नित्य से जा मिलेंगे। यहां नित्यानंद नाम का कोई व्यक्ति नहीं है कि उनसे हमने मिलना है और वो वहां रहता है दिल्ली में तो जाके उससे मिले। नाम होते हैं नितन, नित्य, नित्य ऐसा, लेकिन नित्य का अर्थ ये है, जब भी इस पर आप थोड़ा विचार करेंगे कि वो अब भी है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिस समय हम बातों में लग जाते हैं नित्य से थोड़ा दूर हो जाते, वो मन से निकल जाता है। तो नित्य जो है वो हर जगह पर होगा, ये भी जरूरी है, नहीं तो नित्य नहीं हो सकता। नित्य उसको कहते हैं जो ना तो काल से परिच्छिन्न हो, ना देश से परिच्छिन्न हो, ना वस्तु से परिच्छिन्न हो, वही तो नित्य होगा। नित्य का अर्थ है जो अब है, यही है, और जिसे हम देख रहे हैं वो ही है, नहीं तो नित्य नहीं होगा वो। इसलिए नित्य शब्द की भी जब आप अर्थ करोगे नित्य का, तो नित्य का अर्थ भी वही बन जाएगा जो सत्य का अर्थ, सत्य चित आनंद, उसी को तीनों को एक में ले आओ, सच्चिदानंद कह लो, उसी को नित्य कह लो। नित्य जो होगा वही अदृश्य भी होगा, जो कुछ भी आपको दिखलाई देगा वो त्रिकाल अबाधित नहीं होगा। त्रिकाल अबाधित का अर्थ होता है कि हम 7:30 बजे से पहले यहां नहीं थे, हाल खाली था, अब हम हैं, कुछ देर बाद नहीं होंगे। तो इसको जो त्रिकाल अबाधित का मतलब है, जो 7:30 बजे से पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहे, अगर वो ना हो तो इसके बीच वाला भी कुछ नहीं होगा। जो हम हैं, नित्य के बिना हम भी नहीं होंगे। नित्य ऐसा नहीं है कि उसके बिना हम रह सकें। हम नित्य के अपने, अगर शरीर की दृष्टि से देखोगे तो नित्य के विवर्त हैं। नित्य के विवर्त का मतलब होता है कि नित्य कभी दिखलाई दे जाता है, कभी नहीं देता। व्यवहार चलाने के लिए हम नित्य को भी खंडों में विभाजित कर देते। खंडों में विभाजित का मतलब होता है ये जो समय जिसको हम कहते हैं 7:30 से पहले मिल लेना या 9 के बाद मिलना, नित्य में ये विभाजन नहीं होता। नित्य तो एक रस है। हमने व्यवहार चलाने के लिए नित्य में भी ये थोड़े थोड़े भेद कर दिए कि ऐसा ऐसा। अगर इन भेदों को काट दें, ये भेद ना रहें, तो फिर नित्य की थोड़ी कल्पना करें। नित्य का मतलब केवल इतना ही है कि वो कभी मिटता नहीं, हमेशा रहेगा, हर जगह पर है। नित्य की ही सत्ता से अनित्य का ज्ञान होता है। अगर अनित्य ना हो तो फिर नित्य को भी कोई नहीं जानेगा। अनित्य में परिच्छिन्नता है, अनित्य में दुख है, अनित्य में क्लेश है। अनित्य को ही राग, द्वेष, अभिनिवेश, असीमता आदि शब्दों से कहा, वो सब अनित्य, ये अनित्य के प्रतीक। नित्य में पहुंचते ही ये नहीं रहेंगे, इसलिए उसको नित्य कहा। नित्य है वो। कौन है नित्य? वह जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। जो प्रश्न है ऋषि का वो नित्य, देखो इस अनित्यता में भी नित्यता छुपी हुई। जैसे अव्यक्त से ही सब व्यक्त होता है, जिसको अदृश्य कहते हो, वो ना हो तो दृश्य कभी नहीं होगा। असली सत्ता अदृश्य की ही है, और उसका भी अनुभव आपको हर रोज होता है। आपको हर रोज अदृश्यता का अनुभव का मतलब होता है, नींद में जब आप चले गए तो उस समय आप तो रह जाते, लेकिन इस बात पर हम विचार नहीं करते। आप थोड़ा इस बात को देखो, जागृत अवस्था में जब हम जाग रहे तो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीजों को देखते हैं। आंख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, पांव से चलते हैं। लेकिन हम उतना देख सकेंगे, उतना सुन सकेंगे, उतना पकड़ सकेंगे जितनी हमारी इंद्रियों की शक्ति है। मेरी आंख वहां तक देखेगी जहां तक मेरी आंख की शक्ति। ऐसा नहीं है कि उसके आगे है ही कुछ नहीं, उसके आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरी आंख की शक्ति वहां तक ही है। मेरी सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की है, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक साउंड जिसको कहते हैं। इससे कम को मेरे कान नहीं सुन सकते, इससे अधिक को मेरे कान नहीं सुन सकते। तो ये परिच्छिन्नता इंद्रियों की शक्ति के कारण है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसकी आंख 2 किलोमीटर तक देख ले। कई पक्षियों में ऐसे पक्षी होंगे कि वो 8-10 किलोमीटर तक देख ले। तो आंख की जितनी जितनी क्षमता उतना उतना हम देख लेते। फिर ये बात आई कि स्वप्न में ये आंखें नहीं होती, लेकिन स्वप्न में भी हम देखते हैं। तो स्वप्न में क्योंकि ये इंद्रियां नहीं हैं, स्वप्न में हम इन इंद्रियों के बिना देखते हैं, इसलिए वो दूर तक पूरा समुद्र देख लेते हैं। स्वप्न में पूरा समुद्र दिखलाई देगा, जागते हुए पूरा समुद्र नहीं, एक कोना देखो, एक किनारा देखो। स्वप्न में आप पूरा हिमालय पर्वत देख लेंगे, उसके ऊपर भी चढ़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, समुद्र को देखेंगे। तो वहां पर जो आप देख रहे हैं वो भी आप ही हैं, लेकिन वहां पर हमारी सीमा, हमारी वासनाएं हैं। वासना भी एक शब्द है जो हमारी वृत्तियों को नियंत्रित करता है। वासनाओं की जितनी जैसे इंद्रियां आंख की जितनी शक्ति है उतनी दूर तक देखेगी, वासनाएं जितनी प्रबल है वहां तक हम देख पाएंगे, उसी के दायरे में ही रहेंगे वासनाओं के दायरे में। अगर वासनाएं बड़ी सात्विक हैं तो हम स्वप्न में कैलाश पर्वत पर जाके भगवान शंकर को, पार्वती को, गणेश जी को सब मिलाएंगे, लेकिन मिलेंगे वहां पर गणेश जी को ही, शंकर जी को ही, यीशु मसीह वहां नहीं मिलेगा हमें, वहां पर महात्मा बुद्ध नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ये हमारी वासनाओं की सीमा है कि वो हमें बांधे रखती। देखना जिसको हम कह रहे थे दृश्य, इन आंखों से भी आपने देखा और स्वप्न में भी आपने देखा। स्वप्न में ये इंद्रियां नहीं हैं, लेकिन वासनाओं की सीमा। अब वासनाएं भी न रहें और फिर भी आप देख लें, इसको ऋषि चेतना कहते हैं। ऋषि चेतना का अर्थ यह है कि ऋषियों ने इस बात पर विचार किया कि जो हम स्वप्न में देख सकते हैं, जिन माध्यमों से जो स्वप्न में हम देख सकते हैं, जागृत में क्यों नहीं देख सकते। स्वप्न में ये इंद्रियां नहीं होती, हम फिर भी देखते हैं, तो जागृत में भी इन इंद्रियों के बिना क्यों नहीं देख सकते। ये ध्यान के विषय, इसीलिए ध्यान में वहां वहां तक जाके पहुंचते हैं, और जब ध्यान वासना रहित भी हो जाए तो फिर जहां तक पहुंचते हैं उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। वो पूर्णता है, वो अखंडता है, वो नित्यता है, और नित्य को कभी भी हम बोलकर नहीं बतला सकते जब तक नित्य के टुकड़े ना करें, खंड ना करें, विभाजित ना करें उसको। समय की समग्रता को, काल को केवल हम ध्यान के क्षणों में कुछ पकड़ सकते हैं, और वो भी उससे तादात्म्य में एक हो सकते हैं, लेकिन उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उसको बोल के नहीं बतलाया जा सकता। ऐसे ही नित्य को बतलाया नहीं जा सकता, बस एक ये अवधारणा है जिसके हम नजदीक पहुंच सकते हैं किसी तरह। जो भी नित्य के नजदीक, नित्य में फिर राग द्वेष नहीं होते। नित्य में कोई भी, देखो राग द्वेष तो आने जाने वाले हैं, नित्य वो है जो हमेशा है, हमेशा का मतलब यह है कि उसमें उतार चढ़ाव नहीं है। ऐसा नहीं कि आज सुखी हो गया आज वैसे हो गया। तो नित्य में कोई भी द्वंद नहीं होता, नित्य द्वंद रहित को कहते हैं। जिसमें कोई भी द्वंद नहीं है वही नित्य है। द्वंद्वातीत भी उसको कहेंगे, सत्य भी उसको ही कहेंगे। और जब हम इन इंद्रियों के बिना और वासनाओं के बिना तथ्य को देखने का प्रयत्न करें साधना के माध्यम से, तो फिर हम नित्य तक पहुंच सकते। तो नित्य का जो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखेंगे वो नित्य नहीं होगा, क्योंकि वो खंडित होगा, एक टुकड़ा होगा थोड़ा सा। हमारे इंद्रियों की एक क्षमता है, वो पूर्ण को नहीं देख सकती, टुकड़ों को देख सकती। हमारी वासनाएं हमारे चिंतन को बांध के रखती। वासनाओं में बंधा हुआ चिंतन को हर आदमी अपने अपने ढंग से ही देखेगा। अगर फर्ज करो सूरज भी है और कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठ के केवल सूरज की रोशनी को रोशनदान से आते हुए देखे, कभी और उसने खोल के खिड़की देखा ही नहीं, रोज कमरे में उसके रोशनी आती है रोशनदान से, और वो भी सूरज का कुछ अंदाजा लगा लेगा कि ये रोशनी जिससे आ रही है कैसा है। एक आदमी सूरज को खिड़की के माध्यम से देखता है, एक आदमी उसी सूरज को बाहर आके मैदान में खड़ा होकर देखता है, एक आदमी उसी सूरज को पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर देखता है, एक आदमी सूरज को समुद्र के किनारे खड़ा होकर देखता है, एक आदमी कोणार्क के मंदिर के पास जाके सूरज को देखता है। अब सूरज एक ही है लेकिन इन सब की अभिव्यक्ति अलग अलग होगी। जिसने जहां से देखा वो उसी तरह का उसको बतलाएगा, लेकिन ये सब जो बतला रहे हैं वो सूरज है, ठीक है, लेकिन सूरज ये सब नहीं है जो वो बतला रहे, इससे अतिरिक्त भी ये सब हूं। इसलिए जिसको आप देख रहे हो, कल को यही जो शब्द आज नित्य के आ रहे हैं, ऐसा भी कहेंगे कि जो देख रहे हो ये सब नित्य ही है, नित्य के कारण ही है, लेकिन नित्य होते हुए भी ये नित्य नहीं। ये वेदांत की भाषा है एक विशेष, कि ये क्योंकि नित्य के बिना कुछ होगा ही नहीं। नित्य एक सत्ता है जिसकी सत्ता से हम सत्तावान होते हैं, नित्य को ही सत्य कहते हैं। सत्य नहीं होगा तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, सत्य के बिना तो कुछ होता ही नहीं। और सत्य ही नित्य होता है, त्रिकालाबाधित, जो हर जगह पर हर समय में हर स्थिति में रहे। अब एक ही सूरज को जब अलग अलग तरह के देखेंगे तो अभिव्यक्ति अलग अलग तरह के होगी। अब जितने भी देखने वाले हैं जिनको हम आचार्य कहते हैं, वो आचार्य शंकर हों या वो आचार्य वल्लभाचार्य जी हों, रामानुजाचार्य जी हों, या वो निम्बार्काचार्य जी हों या कोई और, इन सब ने बस बात वही है, किसी ने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर देखा है और किसी ने समुद्र के किनारे होकर, और किसी ने खिड़की से ही देखा है और किसी ने रोशनदान से देखा, सभी ने उसी को, इसलिए अपने अपने ढंग से इन्होंने उसको अभिव्यक्त किया। एक ही को जब ये अभिव्यक्त कर रहे हैं तो लगता है कि अलग अलग बातें, इनके समझने वाले उतनी सी बात को पकड़ेंगे, लेकिन ये समझाते हुए भी सभी आचार्य ये समझाते हुए भी ये कहते हैं कि इतना सा है, लेकिन इसके बाद और भी। इनमें से किसी ने इति श्री वाली बात नहीं कही कि ये बस यही है जो मैं कह रहा हूं। हम सब भी जब किसी बात को कहते हैं तो अपनी अपनी जगह से जिसके संस्कार, कोई बचपन में ब्राह्मणों के घर पैदा हुआ तो उसका सोचना वैसा ही, वो गाय के बारे में गाऊ की बात करेगा तो उसके और तरह के संस्कार होंगे, तुलसी की बात करेगा तो और तरह के होंगे। जो ईसाई धर्म के घर पैदा हुआ, जो मुस्लिम के यहां पैदा हुआ, जो और जगह, वो और तरह से सोचेगा। नित्य या सत्य तो वही है, लेकिन देख रहे हैं अपनी अपनी जगह से लोग, कोई कहीं बैठकर, कोई कहीं बैठकर, कोई कहीं बैठकर। तो जो ही उसको अलग अलग तरह से देखेंगे तो नित्य को नहीं देखा जा सकता। जब इन सब अवधारणाओं को कोई छोड़ सके, इंद्रियों को भी, वासनाओं को भी, संस्कारों को भी, क्योंकि जिसको हम, जिस नित्य को जानना चाहते हैं, वो नित्य किसी भी तरह की परिच्छिन्नता में नहीं है, बंधा हुआ नहीं। और हम अपनी अपनी जाति में, अपने अपने संस्कारों में, अपनी अपनी बुद्धि की क्षमता में बंधे हुए, उससे ज्यादा हम नहीं देख सकते। हम उतना ही देख सकते हैं जितना हमें है। एक दरिया नाम के संत हुए सूफी संतों में, वो कहते हैं जाति हमारी ब्रह्म है, मात पिता हैं राम, घर हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। अब करो इसके अर्थ बैठ के। वो अपना परिचय दे रहे हैं कि जाति तो है ही, जैसे सबकी जाति है, ये ब्राह्मण हैं, ये वैश्य हैं, ये शर्मा जी हैं, ये वर्मा जी हैं, ये वो हैं, ये तो वो कह रहे हैं जाति हमारी ब्रह्म, दयाराम जी ब्रह्म आगे लिख दिया। अब ढूंढो आप ये किस जाति का है, उससे संबंध स्थापित करने हो कि ये हमारी बिरादरी का प्रेसिडेंट बनाए इसको, तो किसको बनाए? तो वो कह रहे हैं कि मेरी वही जाति है जो ब्रह्म की, अर्थात सभी परिच्छिन्नताओं से रहित। कोई ऐसी उपाधि नहीं है जो मुझे परिच्छिन्न कर सके। ये अनुभूति की बात है, ये जो बात कह रहे हैं ये अनुभव की बात है, ये वैसी बात नहीं है। अनुभव की, जब नित्यता का, नित्य शब्द का जब भी अनुभव होगा तो नित्य तो फिर ब्रह्म ही है और कोई है नहीं, बिना ब्रह्म के कोई नित्य नहीं। ब्रह्म भी हमने एक शब्द बना लिया नित्य करने के लिए, नित्य आदि, वो भी एक शब्द ही है। असल में तो अनुभूति के क्षणों में कोई शब्द रहता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जाति हमारी ब्रह्म, मात पिता है राम। राम का मतलब होता है सर्वत्र रमने वाला, जो कण कण में रम रहा है, जिसके बिना कोई भी जगह खाली नहीं, वही हमें जन्म, जिसने हर एक चीज को जन्म दिया है उसी ने मुझे भी दिया। जिसने ये पर्वत बनाए, जिसने ये नदियां बनाई, जिसने ये समुद्र बनाए, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वही मेरा भी बनाने वाला है। मेरे बनाने वाला कोई अलग से थोड़ी बन जाएगा कि बाकी सब चीजें तो वो बनाए और मुझे अमुक अमुक ने बनाया था, वो नहीं है। वो बात नहीं समझ में आती उसकी कि जो सबको बनाने वाला है, अगर कोई कहे मेरे मां बाप, तो उनको किसने बनाया था? और फिर वो वेदांत की एक प्रक्रिया आएगी कि चलते चले जाओ, जिसको अनावस्थित दोष कहते, कि मेरे मां बाप, तेरे मां बाप को किसने बनाया, कि तो उसके मां बाप, फिर उसके मां बाप, गिनते चले जाओ, कहां अंत में कहीं तो जाओगे। तो अंत में जहां पर जाओगे सीधा ही क्यों ना उसे जुड़ जाओ, ये बीच वालों को एक तरफ करो तो किनारे लग जाए। अगर इनको ही पकड़कर बैठे रहोगे तो अनित्य शब्द को नहीं समझ पाओ, अनित्य को तो समझ पाओगे, नित्य शब्द को नहीं समझ पाओगे। नित्य वो है जिससे वो चलता ही जा रहा है, वो नित्य से सब बनते चले जा रहे हैं, वो नित्य का प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। नित्य का प्रवाह जो है ना, वो कभी रुकता नहीं, वो बनाता ही चला जा रहा। खुदा जाने ये दुनिया जलवा गाहे नाज है किसकी, हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है महफल की। पता नहीं कितने आए कहां गए, लेकिन इसकी नित्यता में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओम तत्सत्।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।